आयत नंबर 57 से हम दोबारा शुरू करेंगे. आइए देखते हैं. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے. خود کو خوشخبری دیں کہ مجھے بھی پہنچ گئی ہے. اور یا أيها الناس کا لفظ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں نے آپ نے اس قرآن کو ہر ایک تک جہاں تک پہنچا سکے پہنچانا ہے. اور یہ اس بات کی بھی یقین دہانی ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں. حقیقت یہ ہے کہ قرآن اللہ نے انسانیت کے نام ایک تحفہ بنا کر پیش کیا. جس نے اس قرآن کو تھام لیا اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمتوں کے دروازے کھل گئے. پھر فرمایا موعظتم من ربکم و شفاء لما فی الصدور, یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور ہدایت ہے. عمومی طور پر قرآن دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے. دل کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ اگر آپ دیکھیں تو دلوں میں سے تو کفر اور شرک نکلتا ہے, دل ہی سے تو حسد اور تکبر نکلتا ہے. ہماری بہت ساری خرابیوں کا سر چشمہ دل کی بیماریاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ایک ایسی پیاری دوا بنا دیا. حقیقت یہ ہے کہ یقین کے ساتھ اگر جسمانی طور پہ دل کا مریض, یعنی جس کو آپ اپنی زبان میں ہارٹ پیشنٹ کہتے ہیں, وہ بھی قرآن پڑھے گا تو اللہ اس کو بھی شفا دینے پہ قادر ہے. اور اگر اس کو سمجھ کر سوچ کر پڑھتے ہیں تو یہ قرآن ہمارے دلوں کی بیماریاں بھی دور کرتا ہے. چند سیکنڈ دیتی ہوں, آپ مجھے دیں, میں آپ کو. ہم سوچیں کہ پچھلے 11 پاروں نے میرے دل کی کس کس بیماری کو ختم کیا. حب دنیا کی بیماری گئی, نفاق کی بیماری نکلی, دوسروں سے تکبر, دوسروں کے سامنے بڑا بننے کی تکلیف گئی. آپ دیکھیں گے کہ غیر مخصوص طریقے سے یہ قرآن آپ کی میری اس صفائی کرتا رہتا ہے. اور یہ ایسی خوبصورت صفائی ہے جو کرتے ہی رہیں تو دل ٹھیک رہتے ہیں. صفائی کا کام ایسا نہیں ہے کہ ایک دن کر کے چھوڑ دیجئے, یہ مسلسل کرنے والا کام ہے. تو جو لوگ مسلسل قرآن کے پانی کے ساتھ اپنے دلوں کو جوڑتے رہتے ہیں ان کے ساتھ اسی قسم کا معاملہ اس قرآن کے ساتھ ہوتا ہے. دوسری چیز اس میں دیکھیے ہدن ہے. ہدایت کس کو ملے گی؟ جو اس کو کتاب ہدایت بنا کر پکڑے گا. آپ اور میں اس کتاب کو پڑھیں, ثواب ہوگا, برکت بھی ملے گی, لیکن ہدایت کے لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جتنا اس کو سمجھ کر پڑھیں گے اتنا فائدہ ہوگا. اس وقت ہم تھوڑی تھوڑی ہدایت لے رہے ہیں اس قرآن سے. ہم جلدی جلدی میں اس کے الفاظ کو اپنی زبان میں سمجھ کر نکل جاتے ہیں, لیکن آپ دیکھیے کہ جب اس کے لیے انسان تھوڑا سا وقت لگاتا ہے, جب تھوڑا سا سنجیدگی کے ساتھ کہ واقعی میں نے تو آج تک کی زندگی اس کتاب ہدایت سے گائیڈ لائن لیے بغیر گزار دی. دیکھیے نا, دوسروں نے ہمیں کہا نماز پڑھو, ہم نے پڑھ لی. دوسروں نے کہا روزہ رکھنا چاہیے, رکھ لو. ہم نے بچپن سے جو چند چیزیں سنی تھی وہ کر لیں. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو فرق کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ بالکل ایک جملہ لکھ لیں, ایک ہے آپ کے کہنے پہ بچہ نماز پڑھے اور ایک ہے کہ اس کا دل کہے کہ نماز پڑھو. قرآن سے اس طرح کی ڈائریکٹ گائیڈ لائن لیے بغیر جو نیکیاں ہوتی ہیں نا, یہ پہلی مثال میں آتی ہیں. خشوع نہیں, خضوع نہیں, عبادت کرتے ہیں لیکن اس کا اثر نہیں, کیونکہ امی نے کہا تھا کر لو, میں نے کر لی. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دو نفل برائے ابا جان, ابا جان کے خوف سے دو نمازیں پڑھ لیتے تھے بچپن میں. لیکن جب قرآن آپ خود پڑھتے ہیں نا, یہ ایک بہت بڑا انعام ہے قرآن پڑھنے والوں کو, کہ پھر ان کا دل کرتا ہے میں نیکی کروں, پھر ان کا دل کرتا ہے میں قرآن پڑھوں. یعنی پھر صرف اس سوچ کے ساتھ بھی نہیں کرتے کہ نہ کیا تو مارے جائیں گے, پکڑے جائیں گے, پھنس جائیں گے. تو کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کا کھانا کھانے کو دل کرے اور وہ کھانا کھائے, جس کا کام کرنے کو دل کرے تو وہ کرے. آپ دیکھتے ہیں کہ کام کی کوالٹی بڑھ جاتی ہے. تو قرآن جو ہے وہ آپ کی میری زندگی کو کوالٹی لائف میں بدل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے رہنمائی لینے والا بنا دے. تیسری چیز دیکھیے وہ رحمت للمومنین, یہ رحمت ایمان والوں کے لیے. رحمت کیسے بنتا ہے؟ ہر لفظ پہ 10 نیکیاں. اور اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ قرآن پڑھنے کے ساتھ دلوں میں ٹھنڈک پڑتی ہے. آپ دنیا کے ستائے ہوئے, دنیا کے پریشان کیے ہوئے, دنیا کی مشکلات سے ادھر ادھر گزر کر جب اس قرآن کو تھامتے ہیں نا, ایسے لگتا ہے جیسے دل پر روز پڑنے لگتی ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہو خیر مما یجمعون. اے نبی کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی, اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے. یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں. کیا آپ اس وقت خوشی منا رہے ہیں؟ دنیا کی سب سے بڑی نعمت اس قرآن کو تھامنا, کتاب ہدایت بنا کر, رحمت سمجھ کر, और इसी किताब के फजल को समेटने के लिए। आप देखिए अमूमन लोग क्या क्या चीजें जमा करते हैं, शॉपिंग का शौक है औरतों को, इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक है मर्दों को, टेलीफोन और इसी तरह के छोटे छोटे गैजेट्स का शौक है बच्चों को। हर इंसान की जिंदगी कुछ ना कुछ चीजें जमा करते हुए गुजर जाती है। बचपन में टिकट्स जमा करते हैं, कोई कॉइन्स जमा करता था, पहले दौर में इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज होती थी, अब तो हर चीज फोन पे जमा कर दो। तस्वीरें भी अगर कुछ बनानी है तो वो भी फोन में ही रखी जाती हैं। आप देखिए कि ये कुरान इस कदर खूबसूरत दौलत है कि जब किसी के हाथ में ये कुरान आए तो अल्लाह ताला कहते हैं जाकर उसको मुबारक दो। हम किसी का नया घर आओ तो मुबारक देते हैं, बच्चे का रिश्ता हो तो मुबारक देते हैं, और देनी चाहिए। पीछे ही हमने काब बिन मालिक के वाक़े में पढ़ा कि जब अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई तो सारे मदीने वाले ऐसे उमड़ पड़े कि जैसे उनको मुबारकें दे रहे हैं। तो हमें मुसलमानों की खुशियों पे जलना कुड़ना नहीं चाहिए, मुबारक देनी चाहिए अल्लाह के हुक्म से। लेकिन क्या आज इस सोसाइटी में जिसमें मैं और आप रहते हैं कुरान की मुबारक दुनिया के किसी और कलाम की मुबारक के बराबर है? क्या दिल की खुशी के साथ ये काम होता है? अब आप कहते हैं करें क्या, मैं आपको एक छोटी सी नसीहत करती हूँ, अपनी खुशियों को खुद मनाना शुरू कर दें। आप अपने इस कुरान पढ़ने को जितनी बड़ी नेमत समझती हैं आप इसको लोगों को भी साबित करा सकती हैं। मसलन अभी तो एक दौरे कुरान का सिलसिला है, चलिए तकमील होगी उसकी भी खुशी कर लेंगे, अभी से तकमील के ख्वाब देखने शुरू हो जाएं। आप तफसील से कुरान पढ़ते हैं, सूरत बकरा पूरी हो रही है, आज मैं घर में अच्छा खाना बनाऊंगी, आज मैं अपना अच्छा सा सूट पहनूंगी, आज मैं अपने शौहर बच्चों को एहसास दिलाऊंगी कि आज मेरी जिंदगी में क्या है। कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। होता पता क्या है, जब हम अपने कुरान की खुशी को नहीं सवाब को और इबादत को और मजबूरी को पेश करते हैं ना, तो दूसरों को भी हमारी ये खुशियाँ अच्छी नहीं लगती। मैंने चंद सिस्टर्स से ये चीज़ डिस्कस की है कि जब आप अपने बच्चे की सालगिरह करती हैं तो कितने लोग आते हैं, कहती बहुत सारे आते हैं, बल्कि ना बुलाएं तो गिला करते हैं। इसी तरह शादियों मंगनियों ब्याहों में जो होता है आप सब जानते हैं। तो भाई आपने अपने कुरान की पारे की है, सूरत की तकमील में लोगों को बुलाया, कितने आए? कहती किसी ने कुछ कह दिया, कोई थोड़ी देर पहले कहा था आएंगे, फिर आए वक्त पे बहाने बनने लग गए, या कुछ भी कह लीजिए। यानी अमूमी रोजा क्या है कि जब हम किसी खुशी के मौके पे लोगों को इनवाइट करें जो दुनिया से मुतल्लिक हो तो लोग बड़ी खुशी से आते हैं, बल्कि ना बुलाने वालों से शिकवे भी करते हैं। और शादी के बाद मेरा एक महीना उन रिश्तेदारों को मनाने में लग जाता है जो रूठ चुके होते हैं हमसे खुशियों के मौके पे। लेकिन जब हम दीन की खुशियों में किसी को बुलाएं तो इतना अहमियत नहीं देते, और अगर ना बुलाएं तो कहते हैं शुक्र अल्लाह का नहीं बुलाया तो अच्छा है। वजह क्या है? मैं और आप नहीं अहमियत देते। आप अपने इस कुरान के लिए इधर आने को जितनी अहमियत दे रही हैं, यकीन कीजिए ये कुरान कल आपको उतनी ही अहमियत देगा। अल्लाह ताला हमारी तरजीहात को मुकर्रर कर दे। कुल अराई तुमन सल्लल्लाहु लकुम मिन रिज़्क़िन। अब आगे चंद सवाल हैं, इसको देखिएगा। ए नबी इनसे कहो, तुम लोगों ने कभी ये सोचा है क्या कि जो रिस्क अल्लाह ने तुम्हारे लिए उतारा था इसमें से तुमने खुद ही किसी को हराम और किसी को हलाल करार दिया? इनसे पूछो अल्लाह ने तुमको इसकी इजाजत दी थी या तुम अल्लाह पर झूठ बांधते हो? जो लोग अल्लाह पर ये झूठा इफ्तरा बांधते हैं इनका क्या गुमान है कि क्यामत के रोज इनसे क्या मामला होगा? कुरान जिंदगी में है कोई नहीं, और जहां रह गई बातें तो सिर्फ चंद बातें अल्लाह ताला के नाम पे पेश करते हैं। याद रखिए कि जब तक जिंदगी में कुरान की सच्ची दौलत आपके मेरे नहीं आएगी, आप और मैं सिर्फ सुनी सुनाई को दीन समझकर इधर से उधर करते रहेंगे। ऐसे लोगों ने अगर कभी किसी वक्त ना समझी में कोई ऐसी बात कह दी जो अल्लाह ने नहीं कही तो कल क्यामत के दिन बहुत बड़ी पकड़ का मामला होगा। और अल्लाह तो लोगों पर मेहरबानी की नज़र रखता है, मगर अक्सर इंसान ऐसे हैं जो शुक्र नहीं करते। ए अल्लाह हमें शुक्रगुजार बंदा बना दे, ए अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। और इसके बाद फरमाया, ए नबी तुम जिस हाल में भी होते हो और कुरान में से जो कुछ भी सुनाते हो और लोगों तुम भी जो कुछ करते हो, इन सब के दौरान हम तुमको देखते रहते हैं। ऐसे नहीं लग रहा इस वक्त अल्लाह हमें कह रहा है, हम भी तो इस वक्त कुरान पढ़ पढ़ा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम मेरी नजरों में है। आप देखिए कि जब इस बात को बंदा महसूस करता है ना कि इस वक्त अल्लाह ताला मुझे देख रहा है तो काम में क्वालिटी आती है। एक फितरी सी बात है, जब इंसान को कोई देखता है ना तो वो कॉन्शियस हो जाता है, वो कहता है मुझे क्यों देख रहा है? कभी वो प्यार से देख रहा होता है, कोई गुस्से से देख रहा होता है। तो आप और मैं इस वक्त 3 सेकंड तक खुद को ले, मेरा रब इस वक्त मुझे देख रहा है, पहले तो खुशी से मुस्कुराएं, अल्लाह को कितना प्यार आता होगा। फिर आप इस चीज को कहें कि अल्लाह तू मुझ पे नजर रखना। देखिए हम कहते हैं ना आप पे अल्लाह की नजर हो, तो तो अल्लाह की नज़र कब होती है? जब अल्लाह की किताब आपके हाथ में होती है। आप इसको यूं भी समझिए कि वैसे भी हम अपने प्यारों को याद रखते हैं, लेकिन जिस वक्त हम उनसे फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त बिल्कुल ऐसे ही लग रहा होता है कि हम उनको देख रहे हैं। ये कुरान क्या है? अल्लाह का कलाम, और वो कलाम आपके हाथ में, तो क्या इस वक्त खसूसी तौर पर अल्लाह ताला की आपके ऊपर नजरें नहीं होंगी? फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा करूंगा, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। तो हमेशा इस जगह बैठकर अपने आप को अल्लाह की नज़रों से देखें, और फिर क्वालिटी भी आएगी। फिर हम अपनी सोच भी नहीं बदलेंगे, फिर हम नज़रों से इधर उधर नहीं देखेंगे, क्योंकि आप अल्लाह की नज़रों में हैं। और इससे बड़ा खुशकिस्मती का मौका और क्या हो सकता है? कोई ज़र्रा बराबर चीज़ आसमानों ज़मीन में ऐसी नहीं, ना छोटी ना बड़ी, जो तेरे रब की नज़र से पोशीदा हो और एक साफ दफ्तर में दर्ज ना हो। कितनी बड़ी अल्लाह ताला की कुदरत है। आप देखिए, आप और मैं कहाँ तक देख सकते हैं? मैं आपको इधर पीछे तक देख सकती हूँ, ये साइड पे जो एल शेप है मैं इधर नहीं देख सकती। आप कहाँ देख सकते हैं? आप या मुझे देखेंगे या पीछे दीवार को देखेंगे। पर्दा हटा दिया जाए तो मेरी निगाह वो सामने, कह लीजिए कि बाहर पार्किंग लॉट, और उससे पीछे जो है थोड़ी सी जगह वो दिखेगी आपको, तो वो भी नहीं दिखेगा पीछे। अल्लाह की नज़र कितनी बड़ी है। फिर अल्लाह पे नज़रें लगाए बगैर आप और मैं दुनिया में दूसरों के ऊपर नज़रें लगाएं, ये चीज़ इंसान को अल्लाह की नाकदरी करने पे तैयार करती है। इसीलिए अगली बड़ी खूबसूरत आयत है, वलीउल्लाह कौन है? बाज़ लोग कहते हैं कुरान पढ़ने वाले औलिया कराम की तौहीन करते हैं या उनको नहीं मानते। कैसे कर सकता है कोई औलिया कराम की तौहीन? देखिए कुरान की आयत, आयत 63-65 तक, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुनो, जो अल्लाह के दोस्त हैं, जो ईमान लाए और जिन्होंने तकवा का रवैया इख्तियार किया, इनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं। दुनिया और आखिरत दोनों की जिंदगियों में इनके लिए बशारत ही बशारत है। अल्लाह की बातें बदल नहीं सकती, यही बड़ी कामयाबी है। औलिया अल्लाह कौन होते हैं? हम अमूमन वली अल्लाह किसको समझते हैं? जो पानी पे चल सके, जो सोए तो उनकी आंखें खुली रहें, और जो एक फूंक मारे तो वो फूंक सात समंदर पार चल पड़े। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोगों ने वलीउल्लाह का तसव्वुर एक मजनून और अपने होश से बेहोश शख्स का बना लिया। कुरान क्या कह रहा है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। दो शरायत हैं, ईमान और तकवा। याद रखिए, अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है, औलिया अल्लाह वो हैं जिन्हें देख कर अल्लाह याद आ जाए और जिनकी याद के साथ मैं याद आऊं। किनको देखकर अल्लाह याद आता है? जो अल्लाह की बात मानते हैं, जो अल्लाह वाले बनकर दुनिया में जीते हैं। हमने गले में मनके डाले हुए, लंबा सा चोगा पहना हुआ, हाथ में कोई कशकोल पकड़ा हुआ, उसको अल्लाह वाला बनाया? कैसी बात करते हैं आप? अल्लाह वाला वो है कि जिसको देखकर नेकी करने को दिल करे। अल्लाह वाला वो है कि जिसको देखकर अपनी नेकियां छोटी लगें। अल्लाह वाला वो है जिसको देखकर नेकियों में भागना कोशिश करना पड़े। और सबसे बड़ी बात है, दूसरों को क्यों ढूंढते हो? खुद क्यों नहीं वलीउल्लाह बन जाते? आपको मुझे अल्लाह ने खुली छुट्टी दी है, हम सब वलीउल्लाह बन सकते हैं। शर्त क्या है? कि हम अल्लाह पर नजरें रखें। और आगे देखिए, अल्लाह सुबहान तआला ने यही बात फरमा दी कि जितना ज्यादा एक इंसान अल्लाह पर नजरें लगाएगा, अल्लाह ताला उसके साथ उसका मामला वैसा ही करेगा। एक हदीस का खुलासा है कि कुछ लोग हैं यानी जिनको देखकर अल्लाह याद आता है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो अल्लाह पर बात करने के लिए कसम खा दें, अल्लाह ने वो काम करना नहीं था, लेकिन उनकी कसम को सच्चा करने के लिए अल्लाह ताला वो काम कर देता है। आगे हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे लोगों की बात। हज़रत यूनुस का किस्सा पीछे हम पढ़ चुके, इसी सूरह यूनुस में इसकी मिसाल मौजूद है। हज़रत यूनुस ने कह दिया था अल्लाह का अज़ाब आ रहा है, हालांकि आना नहीं था, अभी खुद से कह दिया जल्दबाजी में। अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम को झूठा ना होने दिया और उस अज़ाब के असरात पैदा कर दिए, कौम को तौबा की तौफीक दी और अज़ाब टाल दिया। तो अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? बात ये कि मैं और आप अल्लाह की याद में जिए। और इस एक आयत के ऊपर बहुत डिटेल से हमने वलीउल्लाह के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन और उसकी बारीकियाँ उस पर बात की हुई है। और उसका खुलासा ही क्या है कि जब आप अल्लाह वाले बनते हैं तो उसका एक दुनिया में ज़ाहरी नतीजा क्या है कि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और वो क्या है कि इंसान बेखौफ हो जाता है। आप यहाँ बैठकर, मैं यहाँ बैठकर अपनी इस विलायत को चेक कर सकते हैं। जिंदगी में सुकून है, इत्मीनान है, स्ट्रेस लेवल, डिप्रेशन, परेशानियाँ, हर एक को देखिए। आज के दौर का वलीउल्लाह कौन है? एक वाकया है जिसकी खुलासा क्या है कि एक शख्स ने किसी की बड़ी तारीफें सुनी और उस इमाम के पास चला गया, कहा जरा जाकर मैं देखूँ इनकी खूबियाँ क्या है, बड़े मशहूर वली हैं। जब गए, कई दिन तक उनके साथ रहे, कोई करामत नहीं देखी। गए थे कि जरा उनकी छुपी हुई करामत देखते हैं कि ये करते क्या है। कई दिन के बाद जब ना मिली तो वापस आने लगे तो कहने लगे कि मेरे आपको मिलने का मकसद जो ये था वो ये था, मैं तो आपकी करामत देखना चाह रहा था, पर मैंने तो इतने दिनों में कोई अनयूजुअल चीज या खिलाफे वाक्या चीज नहीं देखी। तो कहने लगे मुझे एक बात तो बताओ, तुम जितने दिन मेरे साथ रहे हो क्या तुमने मुझे कोई फर्ज नमाज कजा करते देखा? कहा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ये तो नहीं देखा। कहा तुमने मुझे कोई सुन्नत छोड़ते देखा? कहा नहीं। फिर कहा ये बताओ कि जब से तुम मेरे पास हो तुम्हें मेरी जिंदगी में नबी सल्लम की सुन्नतों का रंग दिखा? कहा वो तो दिखा। और इसी तरह की चंद और बातें। क्या ये बताओ कि जब मैं कोई काम करता था तो उस वक्त जो नबी सल्लम की बताई हुई दुआ थी वो मैं पढ़ता था? कहा ये सब तो आप करते थे। कहा जाओ सबसे बड़ा वलीउल्लाह वो है आज के दौर में जो फराइज की पाबंदी करे। हराम तो नहीं खाते देखा? मैं हराम नहीं खा रहा। तो वलीउल्लाह वो होता है कि जो हकीकत में अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के मुताबिक चला दे। अल्लाह ताला आपको मुझे ये विलायत नसीब कर दे। फिर इसके बाद फरमाया दुनिया और आखिरत दोनों जिंदगियों में इनके लिए बशारत ही बशारत है, अल्लाह की बातें बदल नहीं सकती, यही बड़ी कामयाबी है। ऐ नबी जो लोग ये बातें तुझ पर बनाते हैं वो तुझको रंजीदा ना कर दें, इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह के इख्तियार में है और वो सब कुछ सुनता और जानता है। आगाह रहो आसमानों के बसने वाले हों या जमीन के, सब के सब अल्लाह के ममलूक हैं। चंद सेकंड इस पे गौर करें, इतनी बड़ी कायनात और सब अल्लाह की गुलाम, तो वो खुद कितनी बड़ी हस्ती है और उसके नाम के साथ जुड़ना कितनी बड़ी ऑनर है और उसकी मर्जी का बनना कितना बड़ा इंसान के लिए एक एजाज है। और जो लोग अल्लाह के सिवा कुछ अपने खुद साख्ता शरीकों को पुकार रहे हैं वो निरे वहम और गुमान के पैरों हैं और महज कयास अराइयां करते हैं। वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई कि इसमें सुकून हासिल करो और दिन को रोशन बनाया। इसमें निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो खुले कानों से पैगंबर की दावत को सुनते हैं। कितनी बड़ी नेमत है रात। याद कीजिए रात जब तरावियां पढ़ रहे थे झूल रहे थे, जब सारे दिन की थकन के बाद बिस्तर पे लेटते हैं क्या जिस्म को उस वक्त सुकून मिलता है। फिर हम सोए, हमारा सोना भी क्या है, आपको मुझे होश भी नहीं रही क्या हुआ? और उसके बाद जब हम सुबह उठे हम बिल्कुल फ्रेश रिलैक्स्ड। मैं अक्सर सोचती हूँ कि अल्लाह सुभान अल्लाह, कभी आप कुछ जाग रहे हो और आपके इर्द गिर्द दो चार लोग सो रहे हैं ना, आपको उस वक्त समझ आता है या कनाबुदो या कनस्तीन के बाकी तो ये बंदे हैं। कोई पकड़ के थप्पड़ भी मार दे आगे से उठ जवाब नहीं दे सकता, कोई कोई गला दबा दे सोते में कोई उठ नहीं सकता। हर रोज अल्लाह ताला मुझे आपको कुछ घंटों के लिए इतना बेबस कर देते हैं कि हमारी सारी चलती हुई जुबानें बंद हो जाती हैं। आप देखिए बिल्कुल बंदे की सलाहियतें खत्म होने लगती हैं। वो जात है कि ला ताखुज़ु हुसीनतुन वला नौम, जो मेरे आपके लिए नहीं सोता, उसके जागने में और उसके सोने में दोनों चीजों को देखिए तो इंसानी हिसाब के साथ देखिए तो उसको ना सोने की जरूरत है ना जागने की, वल हय्य और अल कय्यूम है। हम जिस तरह बहुत ज्यादा जाग नहीं सकते इसी तरह हम बहुत ज्यादा सो भी नहीं सकते। कितना सो सकते हैं, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, उसके बाद क्या होगा, कमर दुखेगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब एग्जाम्स के दिन होते थे तो खिलाफे मामूल जागना पड़ता था, तो मेरे दिन में पेपर्स के ख़त्म होने का जो सबसे बड़ा जाम क्या था, पेपर दे के आना है आखिरी और सोना है और फिर 2 दिन सोते रहना है। कौन सोता है 2 दिन? आप थोड़ा सा सो जाएं उसके बाद जागने को दिल करता है। तो अल्लाह ताला की ये कुदरत की निशानी है, इस पे गौर की ज़रूरत है। लोगों ने कह दिया कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है, सुबहान अल्लाह वो तो बेनियाज है, आसमानों जमीन में जो कुछ है सब इसकी मिल्क है, तुम्हारे पास इस कॉल के लिए आखिर क्या दलील है? क्या तुम अल्लाह के मुतल्लिक वो बातें कहते हो जो तुम्हारे इल्म में नहीं? ए नबी इनसे कह दो जो लोग अल्लाह पर झूठे इफ्तरा बांधते हैं वो हरगिज फलाह नहीं पा सकते। दुनिया की चंद रोजा जिंदगी के मजे कर लें फिर हमारी ही तरफ इनको पलटना है, फिर हम इस कुफर के बदले में जिसका इर्तकाब वो कर रहे हैं इनको सख्त अजाब का मजा चखाएंगे। तो इस तरह की वो सारी बातें जो एक इंसान को इस बात का यकीन दिला देती हैं कि अल्लाह बहुत बड़ा है। अब यहाँ से आगे सूरत के आखिर तक फिर तकरीबन थोड़ा एंड पे फिर कुछ मौजू बदलेगा, अंबिया कराम के किस्से हैं। थोड़ा सा इसको भी समझिए, हम हमेशा अंबिया कराम के किस्सों को ओवरलुक कर देते हैं, इट्स ओके थे वो नबी वो थे कुछ कर गए। नहीं, ये चुने हुए लोग हैं जिन्होंने अपने टाइम को मैनेज किया, ये हैं वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से चलाया, ये हैं वो लोग कि जिन्होंने थोड़े से अरसे में बहुत कुछ कर दिया। आप देखिए कि अंबिया कराम की जिंदगी को अगर मैं और आप पढ़ रहे हैं और आप कुरान पाक में इनके किस्से, इनकी कौमों के हालात पढ़ते हैं, क्या ये बहुत आइडियल हालात में जिंदगी गुजार के गए? क्या ये विक्ट्री स्टैंड पे खड़े किए गए अपनी जिंदगियों में? नहीं, जिंदगी में तो आप अभी देखिएगा और आगे सूरत हूद में तो हद ही हो जाएगी कि हजरत नूह के साथ जो उनकी जाहिल कौम ने किया। लेकिन आज अल्लाह उनको क्यों गॉड ऑफ ऑनर पेश करता है? आज उनको क्यों निशाने हैदर पेश किए जाते हैं? आज उनको क्यों इतना कुछ दिया जा रहा है? लिख लीजिए एक जुमला, ये मेरे और आपके फायदे का है। इन्होंने मुश्किल हालात में नेकियां की, ये गो विद द फ्लो पे नहीं चले, इन्होंने ऑपोजिट द विंड चलना पसंद किया। चलो तुम इधर हवा हो जिधर नहीं। आप देखेंगे कुरान पाक के असलूब को कि अंबिया कराम ने, हर नबी ने एक दावत मुश्तरक दी और वो क्या थी? कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके बाद नबी ने जिस चीज पर तनकीद की वो सोसाइटी में फैली हुई बुराई थी। कौम शुएब का माली मसला था, कौम लूत का जिनसी मसला था, इसी तरह हर कौम का एक था। अगर अंबिया कराम पीपल प्लीजर होते, जैसा कि हम इस पीछे पढ़ चुके हैं, अल्लाह के आगे बिके हुए ना होते, तो वो लोगों पर तनकीद ही ना करते। वो इशू खोला जो सबसे ज्यादा उस वक्त लोगों की जिंदगियों में आ चुका था। अब आज के तौर पे इस पे लीजिए, आज हम जब किसी ऐसे इशू को हाईलाइट करना चाहते हैं तो लोग कहते हैं छोड़ो ना, क्यों बुरा बनते हो, सबको पता है, सबके घर में किताब है, सब जानते हैं। अब नतीजा क्या निकलता है कि जब आप खामोश हो जाते हैं ना, हदीस में आता है वो गूंगा शैतान है कि जिसने हक को छुपाया। ये ऐसे ही कि जैसे एक मरीज डॉक्टर के पास जाए और मरीज बीमारी छुपा ले और इधर उधर की वाइटामिन की गोलियां दे दू के उसको भेज दें, क्या वो मरीज बचेगा या सेहतमंद होगा? नहीं। यही बात आपको नबियों की जिंदगी से दिखेगी, जात को कुर्बान कर दिया, इज्जत के सदके दे दिए। सबसे मुश्किल होता है अपने दौर की बुराई को हाईलाइट करना। आप देखिए कि अंबिया कराम ने जो तरीकेकार इख्तियार किया, वही आपके और मेरे लिए आज तरीका है। दिल में हो दर्द, अमल में हो खैर ख्वाही, जुबान पे हो नरमी, ताने का नहीं तनकीद का अंदाज नहीं, 900 चूहे खाने वाली मिसालें ना दे, और फिर उसके बाद लोगों को उनकी बुराइयां बताते जाइए। आज लोग आपकी कदर करें ना करें, लोगों का रब आपका नाम बाकी रखेगा। आज के दौर के क्या हर दौर के दीनदारों के लिए यही पैगाम है कि लोगों को इधर उधर की उलझनों में और मुश्किलात में और फिकी बहसों में उलझाने की बजाय उस सोसाइटी और उस मुआशरे में जो काम करने के हैं उसको हाईलाइट करो। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब हम डिप्लोमेटिक हो जाते हैं, जब हम दुनिया के लोगों से, अल्लाह से ज्यादा डरने लगते हैं, तो हम असल पैगाम को गोलमोल कर देते हैं और इधर उधर की बातों में उलझाते हैं। अब इन सारी बातों को जो मैंने अंबिया कराम की शान में आपके सामने रखी, सामने रखते हुए सुनिएगा सबसे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा। और आप हजरत नूह के बारे में जान चुके हैं, आज फिर दोबारा इसको सोच लीजिए, कोई बंदा 950 साल तो दूर की बात है, एक साल भी अल्लाह के रास्ते की मुश्किलात नहीं सह सकता अगर उसने अपना आप अल्लाह को ना बेचा हो। क्या मिलता था उनको जवाब से? क्या मिलता था इस तबलीग में से? कोई जॉब थी उनकी? पे चेक आता था उनके घर में? नहीं, उन्होंने इस चीज को अपना मिशन समझा। दिल में इंसानियत की मोहब्बत थी कि अल्लाह इनको बचा ले, इनको इन खराबियों से बचाने की जरूरत है। और आप देखिए कि फिर क्या क्या मुश्किलें ना आई, लेकिन जमे। और मेरे आपके लिए भी इसमें यही सबक है, जब तक इखलास नहीं होगा, अल्लाह से बदले की उम्मीद नहीं होगी, लोगों की मोहब्बत नहीं होगी, हम दीन के रास्ते की मुश्किलात पे सब्र कर ही नहीं सकते। आइए पढ़ते हैं हजरत नूह की कहानी को। वतलू अलैहिम नबअ नूह, इनको नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाओ, इस वक्त का किस्सा जबकि उन्होंने अपनी कौम से कहा, ऐ बिरादराने कौम, अगर मेरा तुम्हारे दरमियान रहना और अल्लाह की आयात सुना सुना कर तुम्हें गफलत से बेदार करना तुम्हारे लिए नाकाबले बर्दाश्त हो गया है। जरा से इस जुमले पे गौर करें, पीपल प्रेशर में अगर आते हैं तो क्या ये काम करते? यहां से आपको पता लग रहा है ना कि हजरत नूह को आकर लोग कहते थे तुझे नहीं हम बर्दाश्त कर सकते, तू बहुत ही ज्यादा हमें तंग करता है। याद रखिए, जब भी अल्लाह के बनेंगे और अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, लोग आपको मुझे यही कहेंगे, एक तो तुमने जीना हराम किया हुआ है, अपनी नसीहतें अपने पास रखो, मुझे ना बड़बड़ के सुनाओ। हजरत नूह कह रहे हैं लगता है कि तुम्हें मेरा ये काम पसंद नहीं है। हम क्या कहते हैं? हम उस वक्त दीन का काम करेंगे जब लोग हमारी तारीफें करें, माशाल्लाह इन जैसा दीन का काम कौन करता है। और हम उस वक्त करेंगे जब हमारे साथ एक लंबी फौज तैयार हो, और हम तब करेंगे जब हमारे लिए उस काम के बाद बहुत ज्यादा तारीफों के पुल बांधे जाएं। लिख लीजिए, ये रास्ता और ये काम नफ्स खुशी का रास्ता है। इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीन को वापस ले आए। जब तक अपना पूरे का पूरा अल्लाह को नहीं बेचेंगे, आप ये काम नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है, वो यहीं से पलट जाए जिसे जान हो प्यारी। बिलीव मी, मैं सच कहती हूं, या तो अंदर सच ले आए इंसान या पलट जाए, दोनों में इज्जत है। क्योंकि अगर अंदर सच ना हो तो जितना दूर जाकर पलटेंगे उतना ज्यादा परेशान होंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को लोग नाकाबले बर्दाश्त समझते थे, लेकिन जवाब तो सुनिए, जिस चीज से उनके कदम जमे रहे, फअलल्लाहि तवक्कलतु, तो मेरा भरोसा तो अल्लाह पर है। अल्लाह पर नजरें लगाए बगैर ये काम नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता। 100 नफिल पढ़ने आसान और एक बुराई पे तनकीद मुश्किल। और मैं एक यहां जुमला अक्सर बोलती हूँ, आप भी लिख लीजिए, लोगों को 100 नेकियां आप बताएं, वजीफा ये करेंगे फायदा होगा। 2 नफिल पढ़ें, 4 में ये पढ़ लें, यानी जो इबादात है ना, डूस, जिसको इंग्लिश में आप डूस कहते हैं ना, 100 बताएं, लोग खुश होंगे। कभी कोई आप पे तनकीद नहीं करेगा, बल्कि कहेगा कोई जरा और भी वजीफा बता दो। बट उस 100 बातों के करने की बात के मुकाबले में एक बात से रोके नहीं, अनिल मुनकर, उस पे परेशान होंगे। क्योंकि इंसान अपनी तबीयत के एतबार से नेकियां करना चाहता है, तो जब कोई बंदा अल्लाह के नाम पर उसको नेकियों की दावत देता है तो वो खुश होता है। बट वो बुरा कब लगता है, वो बुरा कब बनता है, जब वो हमारी मनपसंद चीजें छुड़वाता है। वो कहता है इसको ज़िबा करो, ये ठीक नहीं, वो नहीं। ये था नबियों का नाकाबले बर्दाश्त होना। वरना आप देखिए, क्या नबी नाउज बिला तबलीग नहीं करते थे अच्छी, या वो कोई बुरे तरीके से करते थे? काम जितनी मीठी जुबान से कर लें, प्यार से कर लें, लोगों को तब नहीं अच्छा लगता जब लोगों की बुराइयों को टोकते हैं। और वो कुरान क्या और वो दीन क्या, जो नफ्स की सारी बातें और मनपसंद तरीका जिंदगी को भी साथ रहने की दावत है, और कह नहीं 2 नफिल एक्स्ट्रा पढ़ लो। मसला आप देखिए, बच्चा बीमार है और इतना बीमार है कि अब उसको कड़वी गोली खानी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, फिर ही सेहत होगी। वो नहीं खाना चाहता, और अगर माँ के हाय मेरा बच्चा कड़वी गोली खाएगा तो उसको बड़ा होगा, और बच्चा तो रोएगा धोएगा, बेहतर है मैं इसको चॉकलेट एक और खिला दूँ। मीठी गोलियों से सेहत नहीं होती। किसी न किसी लेवल पर आकर तनकीद तो करनी पड़ेगी, आपको अपने बच्चों पे भी करनी पड़ेगी, इस माशरे पे भी करनी पड़ेगी। उस वक्त क्या कीजिए, भरोसा अल्लाह पर रखिए, अंदाज नबियों का इख्तियार करें, अखलाक नबियों का, तरीका उनका, और तवक्कुल अल्लाह पर। तुम अपने ठहराए हुए शरीकों को साथ लेकर एक मुत्तफिका फैसला कर लो, और जो मंसूबा तुम्हारे पेश नजर हो इसको खूब सोच समझ लो, ताकि इसका कोई पहलू तुम्हारी निगाह से पोशीदा न रहे। फिर मेरे खिलाफ इसको अमल में ले आओ और मुझे हरगिज मोहलत ना दो। कितना कॉन्फिडेंस है, सारे मिल जाओ मेरे खिलाफ हो जाओ, तुम मेरा बाल का बीका नहीं कर सकते। वो क्या एक शेर भी है ना, कि सारी खुदाई अगर मेरे खिलाफ है, क्या डर अगर एक खुदा मेरे साथ है। ये यकीन ईमान के साथ आता है, अल्लाह पर नजरें लगाने से आता है। कि सारी दुनिया मेरा बुरा चाहे, कुछ नहीं करेंगे जब तक मेरा रब मेरे साथ है। तुमने मेरी नसीहत से मुंह मोड़ा तो मेरा क्या नुकसान। इस पे रुकिए, किसी को भी, और मैं आप सबको भी इस लेवल पे लेती हूँ, क्योंकि आप अभी दौरे कुरान में आए हैं, अपने बच्चों को या अपने घर के छोटे छोटे लोगों को, बस आपका अभी टारगेट ऑडियंस वही है ना। अभी आप में से कोई ये तो नहीं कर रहा कि बाहर जाकर एक प्रोफेशनली लोगों को दीन की दावत दे रहा है, क्योंकि हम में से हर एक का दायरेकार घर से शुरू होता है। आप चंद सेकंड के लिए रुके, तुमने मेरी नसीहत से मुंह मोड़ा तो मेरा क्या नुकसान। बच्चे को आधा जुमला बोलकर चुप कर जाए, सोचो अगर माँ की बात नहीं मानोगे मेरा क्या बिगड़ेगा। जैसे आप देखिए, सर्दी भी हो, बच्चा पहले से भी बीमार हो, फिर आइसक्रीम खाने की जिद करे, एक है वो रो रहा है तड़प रहा है और आप नो नो कर रही हैं और वो और शोर कर रहा है, एक तरीका ये इख्तियार करें, सुनो मैं दे देती हूँ आइसक्रीम, लेकिन सोचो गले में किसके दर्द होगा, इंजेक्शन किसको लगेगा। आधे जुमले बोलकर छोड़ दीजिए, आप देखिएगा अंदर से शऊर उठता है कि बाकी बात तो इनकी सच है। और दूसरी बात, मैं तुमसे किसी अजर का तलबगार नहीं हूं, मेरा अजर तो अल्लाह के जिम्मे है। ये चीज आपको अब सब नबियों के अंदर दिखेगी, तो यहां ही समझ लीजिए इसकी क्या जरूरत होती है। क्या दीन के काम पर किसी से अजर तलब करना, यानी माल की सूरत में है, तोहफों की सूरत में है, तारीफों की सूरत में है, खुश आमदें करवाई जाए उसकी सूरत में, इसका क्यों नबी बार बार तस्करा करते हैं? तो लिखिए, जब बंदा किसी से लेता है तो उससे डरता है। सीधी सी बात है, जिसका खाएंगे उसके गुण गाएंगे। अगर नबियों ने लोगों से कुछ इस काम पे ले लिया होता तो पहली बात है फिर इंस्ट्रक्शंस उनकी माननी थी। आज भी कई ऐसे बेचारे मजबूर मुबल्लिग हैं कि वो नहीं बोल सकते जब तक पीछे से लिखा हुआ खुतबा ना आए, पीछे से लिखी हुई स्पीच ना आए। उनको एक खास प्रोटोकॉल के साथ काम करना है क्योंकि पीछे से कुछ लोगों ने उनको हायर किया हुआ है। इसके बरक्स आप देखिए, किसी अजर की तलब ना रखने वाला फिर हक को हक कहता है। खतरा क्या होता है कि आप हक को बातिल कर दें, डायल्यूट कर दें, पैगाम को बदल दें। ये और नबियों का ये जो अजर दो जैसे माल दौलत की सूरत में नहीं था, असल में ये होता है पॉपुलैरिटी ग्राफ। इस पारे के थीम के साथ वापस आ जाइए, पॉपुलैरिटी ग्राफ का बढ़ना भी तो अजर है ना। कितनों ने लाइक किया, कितनों ने सुना, कितने तुम्हें पसंद करते हैं, ये चीज भी एक अजर ही होता है। जब तक इससे बेनियाज नहीं होते, जब तक इससे बेनियाज नहीं होते, बिल्कुल ठंडे और मुतमईन होकर बैठे। क्योंकि आज के दौर का ये बहुत बड़ा मसला है, हेड काउंट, कितने लोग, कितनों ने फायदा उठाया, कैसे, ये वो। अब देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देती हूँ कि इस साल शुरू में जब हमारी मीटिंग्स हुई तो साथियों ने कहा कि फेसबुक का मीडियम बहुत लोग यूज करते हैं और उसका फायदा क्या है कि वहां तक बात जाती है जो बेचारे दीन के लिए नहीं भी आते, क्योंकि हर एक दोस्तों के दोस्त होते हैं तो उस पर भी प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करेंगे। खैर, मैंने खुद कभी यूज नहीं किया, मुझे उनकी ये बात अच्छी लगी, हमने कोशिश की। वहां रहते हुए जब तक मैं आई नहीं थी, मेरे ही लैपटॉप के थ्रू कुछ किया जा रहा था कि इससे ब्रॉडकास्ट करेंगे। अल्लाह का हुक्म ऐसा हुआ कि यहाँ आने के बाद वो नहीं हुआ, किसी और के साथ इससे चल रहा है आज तक। यानी आज अब माशाल्लाह मेरा 14th डे, मैंने नहीं फेसबुक पे जाकर देखा कि वो फेसबुक जब चलती है तो कितने आते हैं, कितनों ने लाइक किया वो वीडियो ने, कितनों ने टच की, कितनों ने खोली, कितनों ने बंद की, क्योंकि दुनिया में आपको तो एक एक चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। मुझे परवाह नहीं, मुझे इतना पता है कि ये काम हो गया। बेशुमार लोगों ने इस पे कोशिश की है। अगर वीडियोस की सूरत में ये तौरे कुरान फेसबुक पे जा रहा है, और आप सबको भी बता रही हूँ इस वक्त कि ये जा रहा है, जाइए उसको लाइक कीजिए। जो यहाँ आप बैठ के सुन रहे हैं, आप देखिए अफ्रीका, अमेरिका, चाइना और कोरिया, जहाँ भी आपके प्यारे रहते हैं वो इस वक्त बैठ के सुन सकते हैं। मेरा दिल किस पे ठंडा है और मुतमईन है कि साथियों ने कोशिशें की, बहुत सारे लोगों की कोशिशें और उसकी डे वाइज स्लाइड्स बनी, जो कुछ मैंने देखा, एक काम हो गया। अब अगर इस वक्त उसको 5 ने लाइक किया या 5,000 ने किए, लाखों ने किए, मेरा ईमान है कि आने वाले वक्त के लिए अल्लाह ने एक सदका जारिया बना दिया। दैट्स इट। हर रोज गिनूं, हर रोज पढ़ूं, मैंने एक दिन नहीं खोला, मैंने पूछा ही नहीं उस ग्रुप वालों से कि कोई सुनता भी है कि नहीं। बस मुझे हमेशा ये होता है काम सही हो। इस वक्त 2 लोगों को फायदा हो रहा है या 20 को हो रहा है, अच्छा काम करेंगे कल हजारों को होगा। आज आप बेल वाला काम करते हैं, एक छोटा सा मिसाल देती हूँ, पीछे हम पढ़ी उसी मैंने मिसाल दी नहीं, अभी तक मैंने वो सोच के रखी हुई थी कि कहीं भी बात आएगी, कि नबियों के काम को सामने रखिए। हजरत नूह अलैहि सलाम के दौर में कितने लोग थे? 60 से 70, 30-40 औरतें, 30-40 मर्द, थोड़े थे ना। इस वक्त मैंने 2-3 दिन पहले हजरत नूह के बारे में दिल की गहराई से एक कुर्बत महसूस की, और वो क्या, अब देखिए हजरत नूह की जिंदगी में कितने लोग ईमान के साथ जुड़े? 60। हर 12 साल बाद एक बंदा बनता है ऑलमोस्ट, अगर 950 साल का आप ब्रेक डाउन करें। हजरत नूह को तो नहीं खुशी हुई होगी ना, वो तो रो रो के चले गए, वो तो बेचारे लोगों की झिड़कियां सुनते हुए चले गए। बट आज आप और मैं इस हॉल में जितने हैं, हरम में जितने हैं, 1 बिलियन से 2 बिलियन के बीच में इस वक्त उम्मत है मुस्लिम है, ये सब किसका सदका जारी है? नूह अलैहिस्सलाम का। मैंने उस वक्त प्यार से कहा, मैंने कहा नूह जी आप फिक्र ना करें, आपकी जिंदगी में थोड़े थे। आज हर बंदा जो ईमान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर आ रहा है, वो हजरत नूह के खाते में क्यों? आदम सानी, हजरत आदम से पहली दफा इंसानियत शुरू हुई, फिर तूफान नूह में सारी तबाह करके सिर्फ ईमान वालों के बीज पैदा करके उससे नस्ल पैदा कर दी। तो कभी हेड काउंट पे ना जाए, काम वो करें जो दूर रस है। एक होता है दरख्त, दादा लगाए पोता काटे, कितने साल लगते हैं? कई साल लग जाते हैं। एक है बेल, पीछे आपने पढ़ा था ना, मारूशातिन गैरा मारूशातिन, 8वें पारे के बिल्कुल शुरू में पढ़ी थी ये चीजें, सूरत अल अनाम में पढ़ी थी, 7वें पारे के एंड पे पढ़ी थी। एक होता है कि आपका काम फैल रहा है, इधर उधर भाग दौड़, ये वो पंप एंड शो, जैसे आजकल आप देखिए सोशल मीडिया एकदम शोर मच जाता है, वो मशहूर हो गया, ये हो गया। एक बेल की डंडी काट दें, सारी फसल सूख जाएगी, ऐसी होता है ना। और दरख्त है, उसको काटने के लिए आरी भी बड़ी तेज चाहिए। हमेशा दीन का काम, तबलीग का नाम, लोगों को अल्लाह से जोड़ने का काम दरख्त वाली पॉलिसी पे करें। अपनी तबीयत के अंदर ये ठहराव लाएं, जज्बातियत खत्म करें, अपने आप को जमाएं, डीप रूटेड पहले जड़ें बनाएं। हम जब पहले पत्तों का एक झुड़झुड़ देखने लगते हैं ना, तो वल्ला ही एक हवा के झोंके से वो सब गिर जाएंगे। नबियों की जिंदगी में इस्तेहकाम इसलिए था कि उन्होंने पहले अकीदे पे बात की, लोगों में तकवा पैदा किया, सेल्फलेस होना पैदा किया, तारीफ और तनकीद से बेनियाज होना किया, और सबसे बड़ी बात अब इसे आगे देखिए कि मेरा अजर तो अल्लाह के जिम्मे है और मुझे हुक्म दिया गया कि ख्वा कोई माने या ना माने मैं खुद मुस्लिम बनकर हूं। ये बात हम भूल जाते हैं। सबसे बड़ा की पॉइंट, पहले आप खुद मुस्लिम बने। जिस चीज की दावत दूसरों को देते हैं ना, वो पहले खुद से भी तो कबूल कीजिए। आमनर रसूल, सूरत बकरा के आखिर में, रसूल पहले खुद ईमान लाया, क्योंकि मैं ईमान नहीं लाई तो मैं ईमान की दावत क्या दूंगी। तो याद रखिए, आप अपनी जात के ऊपर इस्लाम को ले आइए, अल्लाह पे तवक्कुल कीजिए, बेनियाज हो जाए तारीफ से और तनकीद से, और फिर कहें कि अल्लाह वो काम ले जो हमारी नस्लों तक जाए, वो काम ले जो पहली आंधी के साथ ना फितनों की गिर जाए, फिर आप सो जाए। आपकी जिंदगी में सिर्फ आपकी कोशिशों से एक या दो को फायदा होगा, बड़ी बात है। ये दो कल जमे हुए होंगे ना, ये पता नहीं हजारों पे भारी होंगे। मैं अक्सर सोचती हूं कि अगर इमाम बुखारी जैसा एक शागिर्द क्लास में ना आता, या सिर्फ एक वही आता और उस्ताद पढ़ा जाते, क्या उस्ताद का वो अजर कम था? उस्ताद का अदर बाकी था। तो नबियों की जिंदगी में ये क्यों था? उनका अकीदा पुख्ता था। दुख के साथ क्या कहना पड़ता है कि हम बाज़वत दीन के काम कर रहे होते हैं, अभी हमारा अकीदा ही ठीक नहीं होता, अभी ताल्लुक बिल्ला ही ठीक नहीं होता, अभी हमारे अंदर वो खुद गहराई नहीं आई होती। इसलिए हजरत नूह अलैहि सलाम ने कभी नहीं कहा, आप कभी तो सोचिए कि 950 साल कहने की बात है, कभी डीमोटिवेटेड हुए? कभी उन्होंने गिव अप किया? अब मेरे इंग्लिश के लफ्जों को माफ कीजिए फ्रांस वालों, मुझे भी चार लफ्ज सिखा दें फ्रांस के, फ्रेंच के, जो मैं बोल दिया करूं, लेकिन ये एक वर्ल्ड वाइड बात होती है। यकीन कीजिए कि आप और मैं अगर नबियों से तरीकाकार सीख ले, वो जिसको पंजाबी में कहते हैं सत्ते ही खैरा, एक भी नहीं आए या बहुत आए। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्यामत का दिन होगा, अल्लाह के नबी अपनी उम्मतों के साथ आएंगे और कई नबी ऐसे होंगे उनके साथ एक भी नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। और कुछ नबी ऐसे आएंगे कोई मर्द नहीं होगा। लिख लें, आगे आ रहा है, हजरत लूत के साथ कोई मर्द नहीं होगा क्यामत के दिन, सिर्फ उनकी दो बेटियां ईमान लाई थी। आप और मैं किस कामयाबियों के गुनगाते हैं? हम उन लोगों की नजरों में बड़ा बनना चाहते हैं जो हम ही जैसे गुनाह गा रहे हैं। तो हजरत नूह की, अल्लाह ताला इन कोशिशों को जाया नहीं करेगा।